इधर अगले धनवंतरी प्रभु
हरे कृष्ण ऑन करिए इसे थोड़ा फेस उधर फेस फेस
फेस
आवाज ठीक है हरे कृष्ण लाउड आवाज होने से डिस्ट्रैक्शन नहीं
कौन सा पेज नंबर प्रभु जी
वृंदावन रम्य स्थान वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता माने दामा वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता माने दामा रतन मंदिर मनोहर रतन मंदिर मनोहर अवृत कालिंदिनी रे राजहंस केली करे कालिंदिनी रे राजा हंस केली करे ताहे शोभे कनक कमाला
ताहे शोभे कनक कमाला
ताहे शोभे कनक कमाला मध्ये मा पिता अष्टदले सुव्यस्थित अष्टदले व्यस्थित तार मध्ये मा पिता अष्टदले व्यस्थित अष्टदले प्रधान नायिका
अष्टदले
अष्टदले प्रधान नायिका तारमते रत्नासने बसी अछेन दुईजने तारमते रत्नासने बसी अछेन दुईजने श्याम संगे सुंदरी राधिका
श्याम संगे
श्याम संगे सुंदरी राधिका और पलावन्य राशि अमी पड़ी छे खसी রূপালাবণ্য রাশি আমি করিছে খসি হাস পরিহাস সম্ভাষণে হাস পরিহাস সম্ভাষণে নরতম দাস কহে নিত্য লীলা সুখমা নরতম দাস কহে নিত্য লীলা সুখমা সদা স্ফুরু কমর মানে সদা স্ফুরু কমর সদা স্ফুরু কমর মানে নরতম দাস কহে নিত্য লীলা সুখমা নরতম দাস কহে নিত্য লীলা সুখমা সদা স্ফুরু কমর মানে সদা স্ফুরু কমর মানে সদা স্ফুরু কমর মানে বৃন্দাবন রম্য স্থান দিব্য চিন্তামণি ধাম বৃন্দাবন রম্য স্থান দিব্য চিন্তামণি ধাম রতন মন্দির মনোহর
রতন মন্দির
রতন মন্দির মনোহর হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে শ্রীরাধ গোবিন্দ দেব কি বৃন্দাবন দাম কি শ্রীল প্রভুপাদ কি তাই গৌর প্রেমানন্দে ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম জ্ঞানতিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতম হেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ শ্রীচৈতন্য মনোভীষ্টম স্থাপিতম হেন ভূতলে স্বয়ং রূপা কদা মহ্যম দদাতি স্বপদান্তিকম বন্দেহম শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতা পদকমলম শ্রীগুরুং বৈষ্ণবাংশ শ্রীরূপাং সাগ্রজাতং সহগনা রঘুনাথান্বিতং তং সুজীবং সাদ্বৈতাং সাবধূতং পরিজন সহিতং কৃষ্ণ চৈতন্য দেবং শ্রীরাধা কৃষ্ণ পাদান সহগনা ললিতা শ্রী বিশাখান্বিতং হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধা কান্ত নমস্তুতে ತತ್ತಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯ ಕಾಂಕ್ಷಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸವಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹಮ ಚರ್ಚಾ ಕರೆಂಗೇ ಯಾತ್ರಾ ಯಾತ್ರಾಕ್ಕೆ ಉಪರ್ ಕಿ ಹರ ಏಕ್ ಜೋ ಜೀವ ಹೈ ವೋ ಹಮೇಶಾ ಉತ್ಸಾಹಿತ ರಹತಾ ಹೈ ಬಚ್ಚೆ ಸೇ ಲೇಕರ್ ಯುವಕ್ ಬೂಢಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೀ ಹರ ಕೋಯಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾತ್ರಾಓ ಮೇ ಜಾನಾ ಚಾಹತಾ ಹೈ ಹೈ ಕಿ ನಹೀ ಕ್ಯೋಂಕಿ ವೋ ಅಪ್ನೆ ರೂಟೀನ್ ಲೈಫ್ ಸೇ ಪರೇಶಾನ್ ಹೋ ಗಯಾ ಹೈ ರೂಟೀನ್ ಜೀವನ್ ಸೇ ವೋ ತಪ್ ಗಯಾ ಹೈ ಔರ್ ಐಸೆ ತಪ್ತಮಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸೇ ಬಹಾರ್ ನಿಕಲ್ ಕರ್ ಥೋಡಾ ಸಾ ಅಲಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾ ಅಲಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಅನುಭೂತಿ ಯಾ ಅಲಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾ ಆನಂದ ವೋ ಚಾಹತಾ ಹೈ ಔರ್ ವೋ ಯಾತ್ರಾಓ ಕೆ ಲಿಯೆ ನಿಕಲ್ತಾ ಹೈ ಯೇ ಜೋ ಯಾತ್ರಾ ಶಬ್ದ ಹೈ ಮೈ ಸೋಚ ರಹಾ ಥಾ ಕಿ ಇಸ್ಕೆ ಊಪರ್ ಥೋಡಾ ಹಮ ಚರ್ಚಾ ಕರೇ ಔರ್ ಯೇ ಢೂಂಢನೆ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ ಕರೇ ಕಿ ಯಾತ್ರಾಓ ಕಾ ಉದ್ದೇಶ ಕ್ಯಾ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಕಿಸ್ ಉದ್ದೇಶ ಕಿ ಪೂರ್ತಿ ಕರಣೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮೇ ಭ್ರಮಣ ಕರಣಾ ಚಾಹಿಯೆ ಯಾ ಯಾತ್ರಾಓ ಮೇ ಜಾನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಯೇ ಶಬ್ದ ಬಚಪನ್ ಸೇ ಹಮ ಸುನ್ತೆ ಆಯೆ ಹೈ ಯಾತ್ರಾ तो और आजकल इंटरनेट में yatra.com भी है बहुत फेमस हर कोई व्यक्ति ये लोग बहुत बुद्धिमान हैं स्पेसिफिक शब्दों को ढूंढते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं तो वास्तव में लेकिन ये जो यात्रा है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं ಶಬ್ದ ಭೀ ನಹಿ ಲೇಕಿನ್ ಬಹುತ್ ಹಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಹೈ ಔರ್ ಸಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹರ್ ಜೋ ವರ್ಣ ಔರ್ ಆಶ್ರಮ ಮೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಉಸ್ಕೋ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಪ್ರೇರಿತ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಜಗಾತೆ ಹೈ ಜೀವ ಜಾಗೋ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಹತೆ ಜಗ ಜಾಓ ಔರ್ ನಿಕಲೋ ಯಾತ್ರಾ ಮೇ ನಿಕಲೋ ತೋ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಿ ತೋ ಕೈ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಯಾತ್ರಾಯೆ ಹೈ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸುಬಹ ಸುಬಹ ಅಪ್ನೆ ಭಕ್ತೋಂ ಕೋ ನವದ್ವೀಪ್ ಕಿ ಯಾತ್ರಾ ಕರ್ತೆ ಥೆ ನವದ್ವೀಪ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಹಿ ಉದಿಲೋ ಅರುಣ ಪುರಬ ಭಾಗೆ ದ್ವಿಜ ಮನಿ ಗೋರಾ ಅಮನಿ ಜಾಗೆ ಭಕತ ಸಮೂಹ ಲೈಯ ಸಾತೆ ಗೇಲಾ ನಗರ ಬ್ರಾಜೆ ಬ್ರಾಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರಾಜೆ ಮೀನ್ಸ್ ಭ್ರಮಣ ಕರಣೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ನಿಕಲೆ ತೋ ಭ್ರಮಣ ಕರಣಾ ಭೀ ಯಾತ್ರಾ ಹೈ ತೋ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸುಬಹ ಉಠತೆ ಹಿ ಗಂಗಾ ಕಾ ಸ್ನಾನ ಕರಣೆ ಜಾತೆ ಥೆ ಔರ್ ಅಕೇಲೆ ನಹಿ ನವದ್ವೀಪ್ ಕೆ ಹರ್ ಕೋಯಿ ಸೋಚ್ತಾ ಥಾ ಕಿ ಕಬ್ ಮುಜೆ ಮೌಕಾ ಮಿಲೇಗಾ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೆ ಸಂಗ ಮೇ ಮೈ ಸ್ನಾನ ಕರ್ನೆ ಜಾಓ ನಿಮಾಯಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಜಬ್ ವೋ ಮಾನ್ ವೈಷ್ಣವ ಬನ್ ಗಯೆ ಥೆ ಗಯಾ ಸೇ ವಾಪಸ್ ಆನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಔರ್ ವೋ ಸ್ನಾನ ಕರ್ನೆ ಜಾತೆ ಥೆ ಆನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ತುಲ್ಸಿ ಕಿ ಸೇವಾ ಕರ್ತೆ ಥೆ ತುಲ್ಸಿ ಕೋ ಜಲ್ ದೇತೆ ಥೆ ತುಲ್ಸಿ ಕೋ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತೆ ಥೆ ತುಲ್ಸಿ ಕೋ ಸ್ತುತಿ ಕರ್ತೆ ಥೆ ತುಲ್ಸಿ ಕಿ ಪರಿಕ್ರಮಾ ಕರ್ತೆ ಥೆ ಔರ್ ಫಿರ್ ಭಕ್ತೋಂ ಕೋ ಲೇಕರ್ ನವದ್ವೀಪ್ ವಾಸಿಯೋಂ ಕೋ ಲೇಕರ್ ವೋ ಭ್ರಮಣ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ನಿಕಲ್ತೆ ಥೆ ಭಕತ ಸಮೂಹ ಲಯ ಸಾಥೆ ಗೇಲಾ ನಗರ ಬ್ರಾಜೆ ತಾಥೈ ತಾಥೈ ವೋ ನಾಚತೆ ಹುಯೆ ಜಾತೆ ಥೆ ತೋ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕುರ್ ಕಹತೆ ಹೈ ಸೋನಾರ ಅಂಗ ಉನ್ಕಾ ಜೋ ಅಂಗ ಹೈ ಪಿಘಲೆ ಹುಯೆ ಸ್ವರ್ಣ ಕೆ ಭಾತಿ ಹೈ ಔರ್ ಚರಣೆ ನುಪುರ ಬಾಜೆ ಚರಣೋ ಮೇ ವೋ ನುಪುರ್ ಧಾರಣ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ನಿಕಲ್ತೆ ಥೆ ಔರ್ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕರ್ತೆ ಥೆ ತೋ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೇ ಸುಬಹ ಸೇ ಹಿ ಯಾತ್ರಾ ಶುರು ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ ಹರ್ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿ ಆಫೀಸ್ ಕಿ ಯಾತ್ರಾ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಿ ಯಾತ್ರಾ ಹೈ ಹೈ ಕಿ ನಹೀ ಮಾಲ್ಸ್ ಕಿ ಯಾತ್ರಾ ಹೈ ತೋ ಕೈ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಯಾತ್ರಾಓ ಮೇ ಹಮ ಭ್ರಮಣ ಕರ್ತೆ ಹೈ ತೋ ಇಸ್ ಯಾತ್ರಾ ಕೋ ಕೈ ಶಬ್ದ ಕಹೆ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಜರ್ನಿ ಯಾ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಯಾ ಫಿರ್ ಲೋಕ್ ಜಾತೆ ಹೈ ಪರ್ಯಟನ್ ಪರ್ಯಟನ್ ಕೋ ಕ್ಯಾ ಕಹತೆ ಪರ್ಯಟನ್ ಹೈ ನಾ ಶಬ್ದ ಟೂರಿಸಮ್ ತೋ ಭೀ ಹೈ
तो इस प्रकार से ये हर एक जीव के या हर एक व्यक्ति चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, किसी भी स्थान में क्यों ना हो, हर एक के अंदर ये डला हुआ है, यात्रा में निकलने की प्रवृत्ति है। और इसलिए लेकिन हम शास्त्र में भी हम पढ़ते कि कई प्रकार की यात्राएं हैं, जैसे पूरा जो साल है उसमें हम कई फेस्टिवल्स देखते हैं। यात्रा का मतलब एक भी ये भी है कि उत्सव, फेस्टिवल्स, यात्रा का मतलब प्रोसेशन भी हो सकता है। तो हम देखते हैं गौड़िया संप्रदाय में कई सारी यात्राएं हैं। कौन कौन सी यात्राएं हैं जिनको हम मनाते पूरे साल? रथ यात्रा और झूलन यात्रा, चंदन यात्रा और चार धाम यात्रा और तो जो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है उसको दोल यात्रा कहते हैं। तो इस प्रकार से कई सारी यात्राएं हैं। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब वो थोड़ा परिवर्तन करता है और धार्मिक यात्राओं में निकलता है, बाकी यात्राओं से पक जाता है। अभी सोचता है कि जीवन खत्म होने जा रहा है, चलो अभी बहुत मैंने पाप कर्म किए हैं, बहुत इंद्रियों का तर्पण करने में जीवन बिताया है और अभी मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा पुण्य प्राप्ति हेतु निकलना चाहिए, वो काशी की यात्रा, चार धाम यात्रा और कई प्रकार की यात्राओं में निकलता है। हम व्यक्ति पद यात्रा, तीर्थ यात्रा, कई सारी यात्राएं करता है। आप किसी यात्रा में जाओ या ना जाओ, लेकिन अपनी अंतिम यात्रा में आपको भाग लेना होगा। इसलिए सारी यात्राओं का एक में उद्देश्य है और यात्रा में जो जाता है उसको यात्री कहते हैं। यात्री सही है शब्द? पता नहीं मुझे, मुझे स्पेकुलेट कर रहा हूं। यात्रा में जो जाता है उसको यात्री कहते हैं और जो यात्री है वो हमेशा किसी ना किसी उद्देश्य के लिए उस यात्रा में भाग लेता है। प्रभुपाद का एक बुक भी है, जर्नी क्या है, अन्य लोगों की सुगम यात्रा, दूसरे लोगों में जाने की। हाँ, और फिर वो आत्मा का प्रवास भी है एक बुक। प्रवास का मतलब ही है जर्नी या फिर यात्रा। तो इस प्रकार से हर समय जो जीव है या यात्री है वो तत्पर रहता है यात्रा में निकलने के लिए। और हम ऑलरेडी ऐसे नहीं कि हम पहली बार शिमला की यात्रा में आए हैं या किसी यात्रा में जा रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि पता नहीं हमने कब ये यात्रा शुरू की है। अनादि बहिर्मुख जीवा भोगवांछा करे, हमारी यात्रा कब शुरू हुई थी? जब हमने कृष्ण से अलग होकर भोग करने की भावना को तीव्र अपने हृदय में बनाया और तब भगवान ने कहा ठीक है अभी मैं लंबी यात्रा के लिए भेज देता हूं आपको। फिर कृष्णदास कविराज कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव। हम छोटी मोटी यात्रा में नहीं है, हम किसी एक देश की यात्रा में नहीं है, हम कहां घूम रहे हैं? ब्रह्मांड भ्रमित है। उसी को नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं नाना योनि सदा फिरे करदय बक्षण करे। और ये यात्रा में क्या करता है व्यक्ति, सारे ब्रह्मांडों में ऊपर नीचे भ्रमण करता है, त्रिभुवन में या 14 लोकों में, और एक ही चीज के लिए। कृष्ण नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं नाना योनि सदा फिरे, अलग अलग योनियों में, 84 लाख योनियों में हम यात्रा कर रहे हैं। किस लिए? अलग अलग फ्लेवर चाहते हैं हम। अब जो फ्लेवर आपको पिग के शरीर में, सुअर के शरीर में मिलने वाला है वो मनुष्य शरीर में रह के थोड़ी मिलेगा। बाकी अलग 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 जो बॉडीज है, अलग अलग शरीर है, उनमें अलग अलग फ्लेवर है। उस फ्लेवर को केवल चखने के लिए, स्वाद लेने के लिए, आस्वादन करने के लिए हम कृष्ण से अलग होकर इतनी लंबी यात्रा हमने शुरू की है। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं नाना योनि सदा फिरे करदय भक्षण करे। करदय मतलब जो नहीं खाना चाहिए, अनवांटेड चीज, उसको भी खाने में तत्पर रहता है जीव अलग अलग योनियों में। तो इस प्रकार से हमारी जो यात्रा है ये बहुत लंबी यात्रा हम सबने शुरू की है और ये पता नहीं कब शुरू हुई है और हमें ये भी पता नहीं इसका एंड कब होने वाला है। लेकिन इस यात्रा में हम निकले हैं तो उसका एंड निश्चित है। यदि हम क्या करते हैं, एक उद्देश्य को जानते हैं, इस यात्रा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो शास्त्र कहते हैं कि हम वास्तव में जन्म मरण माला, भक्तिनो ठाकुर अपने गोपीनाथ सॉन्ग में कहते हैं कि हे गोपीनाथ, मैं अभी थक गया हूं, बहुत अधिक पक गया हूं, तंग आ गया हूं, कि जिससे ये जन्म मृत्यु की जो माला है, माला मीन्स क्या, जो घूमती रहती है, जैसे हम माला में जप करते हैं, खत्म ही नहीं होती, यहां से जाओ फिर वापस आ जाओ, हाँ चलता रहता है ये चक्कर। तो उसी प्रकार से भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं कि जन्म मरण माला कि हे गोपीनाथ, मैं तो इस यात्रा में फंस गया हूं, जन्म मृत्यु की जो यात्रा है इसमें अटक गया हूं, और इसलिए प्लीज आप क्या करो, मुझे यहां से बाहर करो। तो इसी कारण से तीन प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो यात्राओं में निकलते हैं, शास्त्र कहते हैं। एक है जो भुक्त है, टेक्निकल वर्ड भुक्त में जो भोगी है, और दूसरा है भक्त, और तीसरा है भगवान। ये तीनों यात्राएं करते हैं, लेकिन ये तीनों के यात्राओं का उद्देश्य अलग अलग है। तो शास्त्र कहते हैं कि जो भोगी व्यक्ति है वो यात्राओं में निकलता है, हाँ तो उसका उद्देश्य यही होता है कि किस प्रकार से अधिक मैं अपने इंद्रियों का तर्पण करूं, किस प्रकार से अधिक 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 से अधिक ये जो दश इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रियां, उनसे कैसे अधिक से अधिक भोग प्राप्त करो, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। तो ये जो कामनाओं को लेकर, भौतिक भोग की कामनाओं को लेकर हम यात्रा करते हैं, तो वास्तव में हम हमेशा उन यात्राओं के द्वारा कभी भी सुख और आनंद की अनुभूति नहीं करेंगे, हमेशा विचलित रहेंगे, चंचल रहेंगे, अशांत रहेंगे, उद्विग्न रहेंगे। लोग यात्रा करते हैं, अभी इटली का पिज्जा बहुत अच्छा है तो भारत से जाते पिज्जा खाने के लिए वहां, या कहां कहां नहीं जाते व्यक्ति विशेष चीजों के लिए। इसलिए यात्रा, ये जो भोगी व्यक्ति है उसके यात्रा का एक में उद्देश्य क्या है, महाभारत कहता है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेहता पशु भी नराना, कि ये भोगी व्यक्ति का एक में उद्देश्य यात्राओं में जाने का कि कैसे अधिक से अधिक मैं इन चार चीजों को बढ़ोतरी कराऊं, और अच्छे से इनको परफॉर्म करूं, और अच्छे से इनको एंजॉय करूं। और वास्तव में लोग शिमला या और पर्यटन स्थल में जाते हैं, वहां जैसे हम कल गए थे वहां, कुछ इन चार चीजों के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था, हाँ मतलब ग्लैमर ऐसा भरा हुआ था कि टोटली लोग आए ही केवल इन चार चीजों में अधिक से अधिक लिप्त होने के लिए, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, उससे परे पता ही नहीं है हाँ क्यों यहाँ आए हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो वास्तव में जो लोग भोग की आकांक्षा लेकर बाहर निकलते हैं, बल्कि शास्त्र वर्णन करते हैं कि जो गृहस्थ व्यक्ति है उसको साल में कम से कम दो बार बाहर निकल जाना चाहिए, अपने पूरे परिवार को लेके निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो बाहर निकलेगा तो उसके उसके ऊपर वो कृष्ण पर निर्भर होने की भावना उसकी बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो स्थान में वो रह रहा है, जिन वस्तुओं आदि से वो आसक्त है, उससे अनासक्ति उसके हृदय में जागृत होगी। इसलिए शास्त्र ये गृहस्थ ड्यूटीज है, इसलिए वो जो सन्यासी है, डिफरेंट साधुज है, उनको शास्त्र प्रेरित करते कि निकलो बाहर। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जहां भी हम निवास करते हैं या इस भौतिक जगत से हम तुरंत अटैच हो जाते हैं, इसलिए शास्त्र हमें बारंबार प्रेरित करते हैं कि हमें निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारे हृदय में अनासक्ति का भावना तीव्रता से जागृत होगा, और फिर हम किसी भी स्थिति में क्यों ना हो सदैव कृष्ण से आसक्त होने लगेंगे और कृष्ण पर हमेशा निर्भर रहेंगे। जनरली भौतिकतावादी व्यक्ति हम भारत के स्थानों से संतुष्ट नहीं है तो यूरोप बाकी विदेशों में अलग अलग स्थानों में जाता है, जो चीज यहाँ कर रहा है वही चीज जाके वहां करता है। प्रभुपाद कहते कि ये यात्रा है, अभी तो ये लोग अंतराल यात्रा चंद्रमा में जा रहे हैं, और जाके करेंगे क्या, नया क्या करेंगे वो लोग, उनके पास जाने के बाद चार ही चीजें हैं जिनको और अच्छी तरह से करने का प्रयास करेंगे, डिफरेंट अलग अलग प्रकार से। तो इस प्रकार से भौतिकतावादी व्यक्ति वास्तव में हर समय मग्न रहता है और इस भावना को लेकर वो निकलता है कि कैसे मैं उन स्थानों में भ्रमण करूंगा और अधिक से अधिक अपने भोग को प्राप्त करूंगा। लेकिन वास्तव में शास्त्र कहते कि भोगों को हम भोग नहीं रहे हैं, भोग हमें क्या कर रहे हैं, भोग रहे हैं। किसी चीज को जैसे आप किसी का भोग करते हो तो वो चीज खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन भोगों का भोग करते करते हमारा शरीर खत्म हो जाता है, भोग वैसे ही बने रहते हैं। तो इसलिए शास्त्र कहते कि यात्रा का मतलब है यातना त्रायते इति यात्रा। यात्रा का उद्देश्य क्या है कि इस भौतिक जड़ जगत की सारी जो यातनाएं हैं उनसे त्राण। जैसे मंत्र का मतलब है मन त्रायते इति मंत्र, मन को जो डिलीवर करता है तारण करता है उसको मंत्र कहते हैं। तो उसी प्रकार से यात्रा का मतलब है यात्रा यातना त्रायते इति यात्रा, कि जिस यात्रा से हमारी यातनाओं से मुक्ति नहीं मिली है, यातनाएं खत्म नहीं हो गई हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि की, हाँ तो वो यात्रा सफल नहीं है। इसलिए हम हर समय इस भौतिक जगत में त्रिताप यातना भुगत रहे हैं, तीन ताप आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक, हाँ त्रिताप यातना से मग्न है। भक्तिनाथ ठाकुर कहते नाना उग्र यातना, कि संसार में सदैव मैं अलग अलग प्रकार के कष्टों से जर्जर हो रहा हूं, सदैव हर समय एक सेकंड भी मैं खाली नहीं हूं। ये भौतिक जगत इस प्रकार से निर्माण किया गया है कि वो यातना के अलावा दे ही नहीं सकता हमें कोई और चीज। इसलिए शंकराचार्य कहते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसार बहुत विस्तारे, ये संसार बहुत कष्टशाली है, बहुत भयावह है और बारंबार वो हमें फोर्सफुली माँ के गर्भ में भेज देता है, क्योंकि हम हर समय नया प्लेस ढूंढना चाहते यात्रा में, है ना। आप जैसे भक्तों का साल में किसी एक प्लेस में ले जाओ और फिर 6 महीने के बाद उसी प्लेस में जाने के लिए तैयार होंगे, कितने लोग आएंगे, नहीं आएंगे। हम सोचते और नया चाहिए, नया कुछ। तो इसलिए जब हम ये आकांक्षा रहते हैं, जीव हर समय सोचता है कि मेरे एंजॉयमेंट के लिए नई नई चीजें चाहिए। एंजॉयमेंट का अर्थ ही है कि नया, नया कार, नया घर, नया सब कुछ भौतिक भोग करने के लिए। तो इसलिए हम हर चीज नहीं चाहते हैं। तो फिर शंकराचार्य कहते हैं कि आपको माँ के घर में भेजा जाता है और फिर आप क्या करते हो, पुनरपि जननम, नया शरीर, और फिर नए शरीर में नए प्रकार के कष्ट भी है, है ना, नए प्रकार की विपदा भी है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, यात्रा का मतलब ही है कि यात्राओं में जाकर हम और अधिक से अधिक अपना प्यूरिफिकेशन, जिस यात्रा से हमारा प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा है वो वास्तव में यात्रा नहीं है। और यात्रा का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक हम अपने अस्तित्व को शुद्ध करें और उस यात्रा के द्वारा हम कृष्ण के क्लोज जाएं। जिस यात्रा के द्वारा हम अपनी शुद्धि नहीं कर पाते, कृष्ण के नजदीक नहीं जा पाते और अपने हृदय में वैराग्य की भावना का विकास नहीं कर पाते, तो वो यात्रा वास्तव में क्या है, परिपूर्ण नहीं है। इसलिए वो तभी संभव है जब हम भक्तों के संग में उस यात्रा को पकड़ते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि मैं हमेशा उत्साहित रहता हूं ट्रैवलिंग करने के लिए, लेकिन कहां जाना चाहता हूं, वो कहते हैं गौर आमार जे सब स्थाने करिलो भ्रमण रंगे से सब स्थाने हेरी वामी प्रणय भक्त संगे। वो कहते कि जहां जहां मेरे प्रभु गौरांग महाप्रभु ने भ्रमण किया है उन उन स्थानों में मैं भी भ्रमण करना चाहता हूं, उन स्थानों में मैं जाना चाहता हूं, लेकिन कैसे जाना चाहता हूं, प्रणय भक्त संगे। जिन भक्तों का प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए है, ऐसे भक्तों के संग में मैं उन स्थानों में जाना चाहता हूं जहां जहां चैतन्य महाप्रभु गए हैं। तो इसलिए यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि वास्तव में हमारी ये जो जन्म मरण की यात्रा है इसको फुल स्टॉप देना, फुल स्टॉप देने के लिए हम यात्रा में आए हैं, या फिर हमेशा उत्साहित होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। तो यात्रा वैसे ही है जैसे कृष्ण कहते भगवद गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्य हम। आप जिस प्रकार से है अर्जुन, जो जो जिस प्रकार से मेरे शरणागत होता है उसी के अनुसार मैं उससे आदान प्रदान करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्य हम। जो जैसा भजन करता है मैं भी उसका वैसा ही उतनी ही मात्रा में भजन करता हूँ, उतनी ही मात्रा में उससे आदान प्रदान करता हूँ। तो वैसे ही वही रूल लागू होता है यात्रा में। जिस भावना को लेकर हम निकलते हैं आते हैं वही चीज हमें क्या होती है, हाँ, मिलती है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम यात्राओं में निकलते हैं तो क्या उद्देश्य होना चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर करके हमें निकलना चाहिए, तभी वास्तव में यात्रा का जो उद्देश्य है वो परिपूर्ण हो सकता है या हासिल हो सकता है। और वास्तव में क्या उद्देश्य है, असली उद्देश्य क्या है, सारे शास्त्र यात्राओं की वर्णन करते हैं, या तीर्थ यात्रा पर्टिकुलर ये शब्द शास्त्रों में पाया जाता है, तीर्थ यात्रा का भ्रमण करना। हाँ, तो पद्म पुराण कहता है वलित पलित देहो वा यौवने नान्वितोपि वः ज्ञात्वा मृत्यु मुनिस्तरीय हरिम शरण व्रजेत। कि आपके पास ये जीवन मिला है और ये जो शरीर आपको मिला है वलित पलित देहो वा, ये शरीर क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है, दिन ब दिन जर्जर हो रहा है, नाना प्रकार की कष्ट इसमें आ रहे हैं, बीमारियां आ रही है। तो ये जो शरीर, चाहे आपके पास बहुत सौंदर्यवान युवा अवस्था भी क्यों ना हो, यौवने नान्वितोपि वा ज्ञात्वा मृत्यु मुनिस्तरीय, की जो मुनि है या जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको ये जानना चाहिए कि ये शरीर मेरे पास है और ये निश्चित रूप से मरणशील है, खत्म होने वाला है। स्थिर्य हरिम शरण आव्रजेत, कि हरि की एक में उस शरण ग्रहण करनी चाहिए। तत्कीर्तने तत्श्रवणे वंदने तस्य पूजने मतिरेव प्रकर्तव्या नान्यत्र वनिता दिशो। तो ये जानकर कि ये शरीर विनाशशील है और ये कुछ ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, मरणशील है, तो ये सोचते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हरि का शरण ग्रहण करना चाहिए। और शरण ग्रहण करने का मतलब क्या है, तत्कीर्तने तत्श्रवणे वंदने तस्य पूजने। तत्कीर्तने, वो जो परम भगवान है हरि है, उनके नामों का कीर्तन, उनके गुणों का कीर्तन और उनके लीलाओं का कीर्तन करना चाहिए। तत्श्रवणे, और उसी को श्रवण करने के लिए तत्पर होना चाहिए। वंदने तस्य पूजने, उनकी वंदना, हाँ, उनको सदैव उनका गुणगान, उनको प्रणाम आदि करना चाहिए। पूजने तस्य पूजने, उनकी पूजा आदि में लगना चाहिए। मति रेव प्रकर्तव्या, व्यक्ति को अपनी जो मति है, अपना जो मन है, हृदय है, नान्यत्र वनितादिशु, वनिता मतलब स्त्री या पत्नी, हाँ, या जो स्त्री है उसके लिए पुरुष, दोनों के लिए श्लोक, हर श्लोक शास्त्र में क्यों अधिक से अधिक श्लोक पुरुषों को करते हुए दिए गए हैं, ताकि उनका शरीर तपस्या आदि को स्वीकार करने के लिए योग्य है। तो इसलिए सारे शास्त्र हर समय जब बोलते हैं तो वो पुरुषों के लिए बोलते हैं। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं मति, अपना जो बुद्धि है, अपना मन है, अपना हृदय है, वनिता आदिशु, जो पत्नी आदि है, घर है, भौतिक वस्तुएं हैं, संपदा है, उनमें नहीं लगाना चाहिए। अपनी मति किस में लगाने का प्रयास करना चाहिए, कृष्ण में, और वो तभी लगेगी जब हम ये करेंगे तत्कीर्तने तत्श्रवणे वंदने और तस्य पूजने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वनश्वरमालोक्य क्षणस्थायि सुदुःखदं जन्म मृत्यु जरातीतं भक्तिवल्लभम अच्युतम्। तो इसलिए शास्त्र हमें इंस्पायर करते हैं कि सर्वनश्वरमालोक्य, सारे जगत की चीजें, ये शरीर भी नश्वर होने वाला है, क्षणस्थायि सुदुःखदं, क्षणमय है और दुखों से भरा हुआ है, जन्म मृत्यु जरातीतं, जन्म मृत्यु से ये उसके उसमें पकड़ में है ये जो शरीर है। भक्ति वल्लभ अच्युत, भक्ति जो वल्लभ प्रिय अच्युत है उनके प्रति भक्ति का उदय करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए शास्त्र आगे कहते हैं कि क्यों जाए तीर्थों में, क्यों यात्राओं में जाए, वो कहते हैं तीर्थेषु लभते साधु रामचंद्र परायणः। एक में उद्देश्य यात्राओं का, क्योंकि ऐसे स्थानों में जाना तीर्थों में या धाम आदि है या कोई भी यात्रा है, उसका उद्देश्य क्या है? वहां जाकर हमें कौन मिलेंगे? वहां कौन मिलेंगे? तीर्थेशु लभते साधु, तीर्थों में धामों में हमें भगवान के महान वैष्णव गण भक्त साधु मिलेंगे। और कैसे है वो साधु? रामचंद्र परायणः, रामचंद्र के प्रति या कृष्ण के प्रति क्या है? बहुत अधिक आसक्त है, परायण है। तो इसलिए यद दर्शनम ऋणम पाप राशि धात सुसुक्ष्म भी, कि उनका दर्शन करने मात्र से हमारे जो अनंत जन्मों के पाप के राशि हैं, पहाड़ हैं, वो क्या होने जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तस्मा तीर्थेषु गंतव्यम नरे संसार भीरु भी, इसलिए तस्मा तीर्थेषु गंतव्यम, इसलिए जाओ, निकलो, अपने भौतिक आसक्तियों को त्याग कर निकलो बाहर और जाओ आध्यात्मिक स्थानों में। नरे संसार भीरु भी, हर जीव इस संसार से हर समय भयभीत है, कौन भयभीत नहीं है? अभी हम आ रहे थे कार से, माउंटेन्स पहाड़ों से गुजरते हुए, कितना भय लग रहा था, हम शेयर नहीं कर रहे थे एक दूसरे के साथ, लेकिन हर समय उत्तराखंड की बातें कर रहे थे, है ना, और निकलने से पहले भी कितना सोच रहे थे। तो इस प्रकार से हर जीव, कोई भी नहीं कह सकता कि ये संसार की भयावह स्थिति से मैं भयभीत नहीं हूं, हर समय भयभीत है, अपने परिवार को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, अपना बैंक बैलेंस को लेकर, अपने शरीर को लेकर, अपने संबंधों को लेकर, हर समय व्यक्ति भयभीत है, उस अवस्था से गुजर रहा है। तस्मा तीर्थेषु गंतव्यम नरे, मनुष्य को निकलना चाहिए पुण्याद केशु सततम साधु श्रेणी विराजेशु, तो ऐसे स्थान में जाकर जो भगवान के प्रति आसक्त वैष्णव गण है उनके संग के लिए जाना चाहिए। और एक में उद्देश्य वही है, इसलिए क्यों जाए और क्यों साधुओं का एसोसिएशन करें? क्योंकि साधु संघ या तीर्थ या फिर दाम आदि है, कोई भी यात्रा है, उनमें यदि हम जाकर प्रमुख चीज कोई है तो भक्तों का संग है, साधुओं का संग है। भगवत वेदा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ तो युधिष्ठिर महाराज, पांच पांडव और धृतराष्ट्र गंधारी वगैरह थे, तो जब उनको पता चला कि विदुर सारे तीर्थों का भ्रमण करके आ रहे हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए वो बाहर निकले, और बाहर निकलते ही उन्होंने कहा कि हे विदुर, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आपको तीर्थों का भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, आप वास्तव में रामचंद्र परायणा है, आप कृष्ण से बहुत अधिक आसक्त हैं। भवद विदा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदावृतः, कि आप तो तीर्थों में जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आप वास्तव में क्या हो? आप चलते बोलते तीर्थ हो, धाम हो। क्यों? सो अंतस्तेन गदावृतः, आप अपने हृदय में गदाधर, जो गदा को धारण करने वाले कृष्ण है, उनको आप लेकर चलते हो, इसलिए वो उनका गुणगान करते। और उसी चीज को भक्ति विनोद ठाकुर कहते, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, आपके हृदय में सदैव गोविंद निवास करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, जब अम्बरीश महाराज के प्रति दुर्वासा ने अपराध किया था, तो दुर्वासा भाग रहे थे, भागते भागते भगवान विष्णु के पास गया और उन्होंने कहा कि तुमने मेरे जो भक्त अम्बरीश को ठेच पहुंचाई है, वास्तव में तुमने मेरे हृदय को ठेच पहुंचाई है, क्योंकि साधवो हृदयो मह्यम, साधु मेरा हृदय है और मैं साधु का हृदय हूं। इस प्रकार से वास्तव में भक्तों का संग, साधु का जो संग करना, किसी आध्यात्मिक स्थान में जाकर, तीर्थों में जाकर, यात्राओं में जाकर, यही एक में वो उद्देश्य है, इसके परे यात्राओं का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, सिंस एन एडवांस डिवोटी कैरीज लॉर्ड विष्णु विद इन हिज हार्ट, ही इज ए मूविंग टेम्पल एंड ए मूविंग विष्णु, वेर एवर ही स्टेज इज ए होली प्लेस। एन एडवांस डिवोटी डज नॉट नीड टू गो ए होली प्लेस, वाई डज ही गो? द आंसर इज दैट ही गो सिंपली टू प्यूरिफाई द प्लेस। तो जो महान वैष्णव गण है वो तीर्थ यात्रा में भ्रमण कर रहे हैं, जैसे विदुर आदि है, नारदा है, व्यासदेव है, श्रील प्रभुपाद जैसे महान महान आचार्य है, वो क्यों भ्रमण कर रहे हैं? इसलिए उस स्थान को वो पवित्र करने का सामर्थ्य उनके पास है। इसलिए हाँ, जो साधु संघ है वो इतना प्रभावशाली है कि चैतन्य महाप्रभु ने सनातन शिक्षा में सनातन गोस्वामी को जब 64 भक्ति के अंगों का शिक्षा प्रदान की तो उसमें उन्होंने कहा तीर्थ ग्रह गति, तीर्थ में निकलो, ग्रह गति जाओ। और उसमें भी वो 64 भक्ति के अंगों में वो कहते हैं कि 5 बहुत प्रमुख हैं भक्तों का, क्या है, नाम संकीर्तन, श्रीमद भागवत श्रवण, साधु संग, मथुरा वास और श्रद्धाया श्री मूर्तिर सेवन। तो ये 5 जो चीजें चैतन्य महाप्रभु ने बोली उसमें से वास्तव में देखा जाए ये जो भक्तों का संघ है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज ये इतना प्रभावशाली है। महाप्रभु कहते हैं कि इन इन 5ों के अल्प संग मात्र से व्यक्ति के हृदय में प्रेम उपज आए, प्रेम निकल आएगा बाहर इनका संग करने मात्र से, 5ों के संपर्क में जब वो आता है। लेकिन इनमें जो साधु संग है वो उसमें ये सारी चीजें निहित है। साधु संघ हो तो साधु संघ के साधु क्या करेगा, नाम संकीर्तन करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो साधु सदैव नाम संकीर्तन करेगा और भागवत श्रवण, भागवतम का गुणगान करेगा, जिसके द्वारा हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी श्रीमद् भागवतम को सुनने की। और क्या है, अर्चा विग्रह की सेवा में तत्पर रहता है। और मथुरावास वैसे ही है क्योंकि जय स्थान है वैष्णवगण, सही स्थान है वृंदावन, जिस स्थान में भक्त है वो स्थान वृंदावन है, कृष्ण है, धाम वास है। इसलिए चारों चीजें बाकी विद्यमान है जब हम भक्तों के संग में बने रहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो उन्होंने कहा वास्तव में कोई भी स्थान क्यों ना हो, कितना ही घृणित और कितना ही दूषित स्थान क्यों ना हो, जब वहां महान वैष्णव के चरण कमल पड़ते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है, पवित्र हो जाता है। श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए, उन्होंने कितने पग पग पर उन्होंने तीर्थ प्रकट कराए। जब हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ा था तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके दिव्य देह को अपने हाथ में उठाकर नृत्य किया और वो ले गए। हरिदास ठाकुर के प्रति प्रगाढ़ प्रेम की भावना चैतन्य महाप्रभु के हृदय में थी और चैतन्य महाप्रभु उनको समंदर में ले गए। बल्कि समंदर अपने आप में पवित्र नहीं है, शास्त्र कहते हैं समंदर में किसी भी स्थान में स्नान नहीं करना चाहिए, जहां शास्त्रों में निहित किया गया है कि ये स्थान उचित है, ये स्थान शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित है, उस स्थान में ही हमें क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, अन्यथा कोई लाभ नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के शरीर को लेकर गए समंदर के किनारे और उनके दिव्य देह को स्नान कराया। तो महाप्रभु कहते हैं हरिदास समुद्र जले स्नान कराईला, प्रभु कहे समुद्र ए महातीर्थ हैला। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जब उनके शरीर को स्नान कराया तो महाप्रभु कहते कि आज से ये समंदर क्या है, महातीर्थ हो गया है, ये इतना पावरफुल स्थान हो गया है, तीर्थराज इसलिए कहते हैं उसको समंदर को भी। तो इस प्रकार से भक्त के संपर्क में आने से कोई भी स्थान क्या होता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए प्रताप रुद्र राजा जब जगन्नाथपुरी में उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के लिए गए हैं तो राजा प्रताप रुद्र को बहुत दुख हुआ कि अरे मेरे राज्य में इतने महान, उनको पता चला सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा कि ये जो सन्यासी है ये कोई सर्व सामान्य नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है और ये महानुभव है या महान्त है। तो उनको बहुत दुख हो रहा था कि क्यों मेरे राज्य से ये चला गया, क्योंकि मेरे राज्य की शोभा क्या है, महान महान शुद्ध भक्त जब वहां निवास करते हैं। जैसे पृथ्वी देवी कहती है कि मैं आपने आपको आभूषणों से तब महत्व, आपने आपको आभूषण से क्या अलंकृत महसूस करती हूं, कब, जब मेरे ऊपर जो महान शुद्ध भक्त कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति रखने वाले जो शुद्ध भक्त है जब इस मेरे ऊपर विचरण करते हैं और मैं बहुत दुखी होती हूं जब ऐसे महान भक्त का स्पर्श मुझे नहीं प्राप्त होता, वो इस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। पृथ्वी कहती है और वास्तव में नरोत्तम दास ठाकुर ने भी कहा अवनीर सुसंपदा कि जो महान वैष्णव है वो पृथ्वी की संपदा है। तो इस प्रकार से राजा प्रताप रुद्र भी दुखी हो रहे थे, वो कह रहे थे कि क्यों वो चले गए। तो सार्व भट्टाचार्य कहते हैं राजा कहे जगन्नाथ छाड़ी केने गेला, भट्ट कहे महान तेरा एक लीला। तो राजा ने कहा क्यों ये चले गए, छोड़कर क्यों चले गए जगन्नाथपुरी, मेरा जो ओरिसा है। तो उन्होंने कहा कि सर्व भट्टाचार्य कहते कि जो महंत हैं, महान वैष्णव है, महाभागवत है, महाजन है, उनकी एक लीला है। तीर्थ पवित्र करते करे तीर्थ ब्रह्मान से चले निस्तार है सांसारिक जान। तो हमने देखा हाँ कि पहला जो यात्रा करता है व्यक्ति जो भोगी हाँ वो भोग की आकांक्षा को लेकर, और जो भक्त है चैतन्य महाप्रभु डिवोटी है भक्त है वो भ्रमण करते हैं। क्यों, तीर्थ पवित्र करते करे तीर्थ भ्रमण से चले निस्तारे सांसारिक जन, जो सांसारिक जन है जीव है प्रगाढ़ भौतिक आसक्ति में मग्न है उन लोगों को मुक्त करने के लिए और उन तीर्थ स्थानों को पवित्र करने के लिए वास्तव में भगवान के ऐसे महान भक्त हाँ निकलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए सार्व भट्टाचार्य ये कहते हैं और आगे वो कहते हैं दक्षिणागमन प्रभुर अति विलक्षण सहस्र सहस्र तीर्थ कैल दर्शन। तो महाप्रभु का दक्षिण भारत का भ्रमण बहुत विलक्षण है, अद्भुत है कि जहां चैतन्य महाप्रभु ने हजारों हजारों तीर्थों का भ्रमण किया सही सब तीर्थ स्पर्शी महातीर्थ कैला सही चले सही देशेर लोक निस्तारिला। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने ये उनका छल है कि केवल तीर्थ भ्रमण करने का एक बहाना है लेकिन उस तीर्थ को भी पवित्र करने का सामर्थ्य उनके पास है। और दूसरा क्या है, जो सांसारिक जीवों को उन देशों के लोगों को उन्होंने मुक्त किया, इस कारण से जो महान भगवान के भक्त हैं वो तीर्थ भ्रमण करते हैं और जिन जिन स्थानों में वो जाते हैं अपने चरण कमल रखते हैं वो स्थान महातीर्थ हो जाता है। जैसे राजा प्रताप रुद्र ने भी कहा जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकले पहली बार जगन्नाथपुरी से, तो राजा प्रताप रुद्र ने आज्ञा दी थी कि जहां जहां चैतन्य महाप्रभु नदी को पार करेंगे तो वहां वहां कई सारी नौकाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, और इतना ही नहीं और जिन नदी के किनारे पर या तट पर वो स्नान करेंगे उस स्थान में क्या करो, अपने मंत्रियों को उन्होंने आदेश दिया था प्रताप रुद्र ने कि उस स्थान में आप बड़े बड़े स्तंभ को बनाओ, स्तंभ का रोपण करो कि वहां जाकर मैं क्या करूंगा नित्य स्नान करीब तहा तहा जैन मरी। प्रताप रुद्र ने इच्छा व्यक्त की थी कि जहां चैतन्य महाप्रभु के चरण पड़े हैं वो या जहां उन्होंने स्नान किया है मैं वहां नित्य स्नान करूंगा, और मैं ये इच्छा व्यक्त करता हूं, मेरी ये इच्छा है कि उस स्थान में मुझे मरने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो इस प्रकार से वास्तव में आध्यात्मिक यात्राओं का उद्देश्य यही है कि महान भक्त के संग में आना और उनके संग का लाभ उठाना। जैसे प्रभुपाद के बारे में हम सुनते हैं कि प्रभुपाद ने भी सब स्थानों में भ्रमण किया और भक्तों को इसलिए कहा जाता है पुण्य तीर्थ, भक्त का एक नाम है पुण्य तीर्थ। प्रभुपाद ने अपने एक डिसाइपल का नाम भी रखा था पुण्य तीर्थ। तो जो शिष्य है या डिवोटी है या साधक है उसके लिए दो तीर्थ है। क्या है दो तीर्थ, एक है भक्त और दूसरा है उसके आध्यात्मिक गुरु, ये उसके लिए प्रमुख क्या है तीर्थ है, वैष्णवाज और दूसरे है आध्यात्मिक गुरु, ये उसके लिए प्रमुख तीर्थ है। इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं श्रीमद भागवतम में कपिल देव कहते हैं, कपिल देव के इसमें वर्णन आता है देवोवती माता बहुत अधिक शोक करती हैं, वो कहती है कि मैं कितने दुर्भाग्यशाली हूं कि मुझे इतना अच्छा मौका मिला कर्दम मुनि और आप जैसे पुत्र मुझे मिले फिर भी मैं अपने इंद्रियों पर वश नहीं कर पाती इसलिए मैं आपका आपके संग का लाभ नहीं उठा पाई। हाँ तो वो कहती है कि पहले अपॉर्चुनिटी हर एक व्यक्ति के लिए यही है कि उसके पास मनुष्य शरीर है, दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है सही घर में जन्म मिला है या भारतवर्ष में जन्म मिला है, और तीसरी अपॉर्चुनिटी क्या है, भक्तों का संग मिला है। तो देवहूति कहते कि ये तीनों मेरे पास हैं, लेकिन मैं इतनी दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं उसका लाभ नहीं उठा पाए। तो इसलिए वो आगे एक श्लोक में कहती है, नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन नपी समृत्तो ही। कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को रेगुलर करता है, अपने ड्यूटीज को, उन कार्यों के द्वारा धार्मिक कार्य नहीं होता। न धर्माय, न यत कर्म धर्माय, धार्मिक कार्य, धर्म का कार्य संपादन नहीं होता, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से न विरागाय कल्पते, वैराग्य नहीं आता, तो वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी क्या है, यूजलेस है। और ऐसे वैराग्य के द्वारा यदि न तीर्थ पद सेवाय, वैराग्य के द्वारा परम भगवान और उनके भक्तों के प्रति सेवा करने के तीव्र भावना यदि हृदय में जागृत नहीं होती, तो ऐसा वैराग्य देहूति कहती क्या है, यूजलेस है। जीवन अपि मृत्यु ही सहा, ऐसा व्यक्ति सांस लेते हुए भी मरे हुए व्यक्ति के समान है। हाँ, इसलिए ये उद्देश्य है। तो इसलिए कृष्ण के कई सारे नाम है, उसमें तीर्थ श्रवा, तीर्थ कीर्ति, तीर्थ पाद, ये सब कृष्ण के नाम है। इन सब का यही अर्थ है कि क्या यात्राओं के माध्यम से अधिक हम भगवान के जो भक्त हैं उनका संग लाभ करें, जिसके द्वारा हम यात्रा का जो परम उद्देश्य है कृष्ण के प्रति अहेतु का अनुराग हमारे हृदय में जागृत करें। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकले थे तो वो सब भक्तों का परमिशन ले रहे थे, और वास्तव में बहुत आवश्यक है। आप अपने सेवा के स्थान को छोड़कर जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए, परमिशन लेके जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जब भी निकलते थे जगन्नाथ का परमिशन लेते थे और दूसरा वैष्णवों का। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, गुरु भगवान वैष्णव तीनेर स्मरण, तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। केवल इन तीनों का स्मरण ही इतना पावरफुल है, गुरु भगवान और वैष्णव, इन तीनों का स्मरण करने मात्र से आध्यात्मिक जीवन के सारे जो विघ्न है, विपदा आदि है, उनका समूल उच्छादन हो जाता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकले और उन्होंने तो ये बहाना बनाया कि मेरे जो बड़े भाई हैं विश्वरूप, वो संन्यास लेकर जब से गए हैं तब से मैं उनको मिला नहीं, और मैं उनको ढूंढने के लिए जा रहा हूं दक्षिण भारत की यात्रा के लिए, मैं आप सब वैष्णवों से आशीर्वाद की कामना करता हूं, और जगन्नाथ देव के पास जाते, भगवान जगन्नाथ के पास, सार्वभौम भट्टाचार्य, नित्यानंद प्रभु, रामानंद राय तो नहीं थे उस समय, लेकिन बाकी और जो जगदानंद है, मुकुंद है, दामोदर पंडित, इन सबसे वो परमिशन लेते हैं और वो निकलते हैं। तो जब बिल्कुल निकलने वाले थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत दुखी होते हैं, वो कहते कि आप चले जाओगे तो हमें संग लाभ कहाँ प्राप्त होगा। वो रोने लगे सार्वभौम भट्टाचार्य, उन्होंने कहा प्लीज आप क्या करो, दो दिन और रुको, दो दिन के बाद अपनी यात्रा शुरू करो। हाँ, दो दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु की सेवा की, और फिर जब चैतन्य महाप्रभु निकले दो दिन के बाद, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक बहुत अच्छी चीज उनको कही। उन्होंने कहा आप यात्रा में जा रहे हो तो क्या करो, एक व्यक्ति को जरूर मिलना। वो कहते हैं, रामानंद राय आछे गोदावरी तीरे, अधिकारी हय न ते हो विद्यानगर। कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है रामानंद राय, जो गोदावरी के तट पर दक्षिण भारत में विद्यानगर में गवर्नर है, अधिकारी है। तुम्हारा संगे रोग्य ते हो एक जान, पृथ्वी ते रसिक भक्त नाही तारसाम। और आपके संग के लिए योग्य व्यक्ति है, उनके जैसा पृथ्वी में महा भक्त या रसिक भक्त नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य की बात को बहुत गंभीरता से लिया, हाँ, कि मैं यात्रा में जा रहा हूं और मुझे यात्रा का असली उद्देश्य क्या है, वहां जाकर भक्त को मिलना, उनका एसोसिएशन के लिए तत्पर होना। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने कभी रामानंद राय को देखा नहीं था, और उस समय कोई ईमेल या कोई लेटर्स या फिर कोई फोन आदि की तो कोई व्यवस्था नहीं है, कैसे ढूंढेंगे उनको। हाँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के हृदय में प्रगाढ़ इच्छा थी किसका संग लाभ करने की, रामानंद राय। हाँ, वो इच्छा हमें उस स्थान में ले जाती हैं, उससे मिला देती हैं। तो जो प्रगाढ़ इच्छा चैतन्य महाप्रभु के हृदय में थी रामानंद राय को मिलने की, तो वो गए दक्षिण भारत में। महाप्रभु तो रोज चलते जाते थे, चलते हुए कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे, नाचते हुए जाते थे, और जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आता था दक्षिण भारत की यात्रा में, उसको वो भक्त महावैष्णव में परिवर्तित करते थे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु भ्रमण करते करते दक्षिण भारत में गए गोदावरी के किनारे, और वहां जाकर उन्होंने स्नान किया। स्नान करके वो वहां बैठे और सोच ही रहे थे रामानंद राय के बारे में, तो उसी क्षण रामानंद राय अपने कई सारे सेवकों के संग पालकी में बैठ के आ रहे थे, और आगे कई ब्राह्मण आदि स्तुति करते हुए जा रहे थे, और स्नान करने के लिए आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय जब उतरे स्नान करने लगे, रामानंद राय को देखे वो समझ गए कि यही है वो रामानंद राय। चैतन्य महाप्रभु आए और दोनों एक दूसरे का आलिंगन करने लगे, क्योंकि शुद्ध भक्त की पहचान कौन कर सकता है, केवल शुद्ध भक्त। हाँ, तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भक्तों को जज नहीं करना चाहिए हमें एक दूसरे को। जब जज करने की टेंडेंसी आती है तो हम क्या करते हैं, अपराध को अपने जीवन में धारण करते हैं। वैष्णव अपराध रूपी जो मत्ता हाथी है उसको हम अपने भक्तिमय जो गार्डन है उसमें इन्वाइट करते हैं। तो जब रामानंद राय से वो मिले, और लगभग कई दिनों तक चैतन्य महाप्रभु ने उनके साथ कृष्ण कथा में मग्न हो गए। बल्कि रामानंद राय, चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तो रामानंद राय कहते कि मैं तो अयोग्य हूँ, आप तो सन्यासी हो और सन्यास आश्रम सारे आश्रमों और वर्णों का गुरु है, और आप वास्तव में सारे तत्वों के ज्ञाता है, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। लेकिन रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु एक प्रकार से पुश कर रहे थे कि नहीं नहीं, आप कृष्ण कथा को जानते हैं। तो रामानंद राय के द्वारा वर्णित चर्चा को चैतन्य महाप्रभु सुने, लंबे समय तक दिन रात वो श्रवण करते रहे। और जब वो डिस्कशन खत्म हुआ तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखो तुम कहाँ फंसे हो गवर्नर की ड्यूटीज में, आप आ जाओ ना परमानेंटली छुट्टी निकाल कर, हम दोनों कहाँ रहेंगे, जगन्नाथपुरी में, और वहां रहकर सदैव अपना जो समय है कृष्ण का गुणगान करने में लगाएंगे। तो रामानंद राय ने कहा मैं जरूर प्रयास करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु की प्रगाढ़ इच्छा थे, और आगे चलकर राम जानते हैं कि किस प्रकार से प्रताप रुद्र ने उनको मुक्त कर दिया, और वो रामानंद राय आए जगन्नाथपुरी। तो रामानंद राय वहां थे, और मतलब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में दो बार रामानंद राय से मिले, जाते समय, और जब महाप्रभु ने अपनी यात्रा मुंबई में आकर खत्म की थी। मुंबई में एक स्थान है बाणगंगा, मलाबार हिल, जहां बाणगंगा है। बाणगंगा वो प्लेस है जब सीता का अपहरण हुआ था, भगवान राम और लक्ष्मण जब सीता के खोज में निकले थे तो वो वहां पहुंचे, मुंबई में पहुंचे मलाबार हिल। उस समय तो मुंबई सिटी नहीं था, तो भगवान राम को गायत्री करने थे, तो जब करना था गायत्री का दोपहर का समय हुआ था, तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा देखो गायत्री करने से पहले आचमन करना चाहिए, मेरे लिए आचमन के लिए पानी की व्यवस्था करो। लेकिन सामने तो समंदर है, खारा नमक नमकीन पानी है, उससे कैसे आचमन किया जाए, आचमन के लिए शुद्ध जल होना आवश्यक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो लक्ष्मण ने क्या किया, बाण मारा तो उस पत्थर पर, तो उससे गंगा प्रकट हो गई, और इतना बड़ा सरोवर है, जलाशय है। अभी अभी रिसेंटली इस्कॉन चौपाटी ने उसमें बोट फेस्टिवल किया था कुछ एक दो महीने पहले बाणगंगा में। तो महाप्रभु उस स्थान में गए, एक दो दिन रहे बाणगंगा में, भगवान राम की लीलाओं का स्मरण किया, वो तो साक्षात राम ही है। हाँ, लेकिन एक आदर्श, उस जिस आध्यात्मिक स्थान में जाते हो बहुत महत्वपूर्ण है उस स्थान के ग्लोरीज का गुणगान करना। हाँ, तो फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से वापस आते हैं, फिर दक्षिण भारत में रामानंद राय के वहां से गुजरते हैं, फिर रामानंद राय को मिलते हैं और फिर से याद दिलाते हैं कि आप क्या करो, वहां आ जाना वापस। तो जब यात्रा खत्म करके रामानंद राय जगन्नाथपुरी आए, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए, तो सारे वैष्णवगण उनको मिलने के लिए आए। वो सब आतुरता से उनका इंतजार कर रहे थे, जैसे चातक पक्षी यहाँ का जल नहीं पीता, वो जो पहले वर्षा का जल जो ऊपर से गिरता है उसको पीने के लिए लालायित रहता है, चिल्लाते हुए अपनी चोंच को खोलते हुए। तो उसी प्रकार से सारे जगन्नाथपुरी के निवासी सार्वभौम भट्टाचार्य, नित्यानंद प्रभु आदि वो सोच रहे थे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, और फिर महाप्रभु आए मिले, तो फिर चैतन्य महाप्रभु जब मिले तो उस रात्रि को महाप्रभु सोए नहीं, सारे भक्त, जैसे हम भी यात्रा से जाते तो हम बताना चाहते ना दूसरों को अपने एक्सपीरियंस और कहाँ कहाँ मैंने भ्रमण किया, क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रसाद पाया। तो चैतन्य महाप्रभु भी आए, तो चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्त पूछने लगे, तो चैतन्य महाप्रभु ने लंबी बातें की। कृष्णदास कविराज कहते कि रात्रि चली गई, महाप्रभु वर्णन करते जा रहे थे और सार्वभौम भट्टाचार्य आदि भक्त जब सुन रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने एक चीज कही और वो वास्तव में सार है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अपनी यात्रा का वृत्तांत सुनाते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक रामानंद राय बहु सुख दिला, भट्ट कहे यही लागे मिलते कहिला। उन्होंने कहा पूरी यात्रा में मैं भ्रमण किया 2 साल दक्षिण भारत की, लेकिन एक ही चीज ने मुझे सुख दिया है पूरी यात्रा में, और वो कौन है? रामानंद राय। एक रामानंद राय बहुत सुख दिला। तो हम सोच सकते हैं कि वास्तव में यात्रा का परम उद्देश्य है भक्तों का संग प्राप्त करना और श्रवण कीर्तन में मग्न होना। तो ऐसे रामानंद राय ने मुझे बहुत अधिक आनंद प्रदान किया पूरी यात्रा में, भट्टक है सार्वभौम भट्टाचार्य के, तो यही तो कारण था। मैंने आपको बोला था कि दक्षिण भारत की यात्रा में जाओगे तो किन से जाकर मिलो? रामानंद राय से मिलो। तो इसलिए बहुत आवश्यक है। इसी कारण से भगवान कृष्ण जब कुरुक्षेत्र की यात्रा में गए, सब लोग यात्रा में जा रहे हैं, डिवोटीज हो, नॉन डिवोटीज हो, या भगवान हो, या सब, हर कोई यात्रा में जा रहा है। तो कृष्ण अपने सारे 16,108 रानियों को लेकर कुरुक्षेत्र की यात्रा में गए थे सूर्य ग्रहण के समय, और वहां उस यात्रा में जब गए तो बहुत सारे ऋषि मुनीज वहां आए थे। व्यास देव है, नारदा आदि है, सब वहां एकत्रित हुए थे। तो ऐसे चैतन्य ने, कृष्ण, भगवान कृष्ण ने जब वो बैठे थे अपने टेंट में, तो वहां कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देने लगे सबको। तो कृष्ण कहते वहां, अहो वयम जन्म भृतो लब्धम कार्स्नेन तत्फलम देवानामपि दुष्प्राप्यम यद्योगेश्वर दर्शनम। कहते कि आज तो हमारा जो यात्रा है या कुरुक्षेत्र आने का जो उद्देश्य वो सफल हो गया है। अहो वयम जन्म भृत, और दूसरा वो कहते हैं कि आज हमारा जन्म लेना सफल हो गया है। कृष्ण कहते हैं लब्ध कार्स्नेन तत्फलम, महान फल हमें प्राप्त हुआ है। और वो क्या फल है? कृष्ण कहते देवानामपि दुष्प्राप्यम, देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है, क्या दुर्लभ है? यद्योगेश्वर दर्शनम, महान महान वैष्णव का दर्शन और उनके द्वारा कृष्ण कथा को सुनना, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वो चीज हमें कुरुक्षेत्र में आकर क्या हो रही है? प्राप्त हो रही है। और वास्तव में देवतागण भी सदैव लालायित रहते हैं कृष्ण के बारे में श्रवण करने के लिए। पुराणों में वर्णन आता है जब राजा परीक्षित को श्राप मिला तो परीक्षित महाराज सारी चीजों का त्याग कर गंगा के तट पर गए और शुकदेव गोस्वामी भगवान की व्यवस्था से उस स्थान में पहुंचे। तो वहां जब श्रीमद भागवतम को नरेट करने वाले थे, भागवतम का वर्णन करने वाले, तो देवतागण आए अमृत का कलश लेकर, किसके पास? शुकदेव गोस्वामी के पास। और उन्होंने कहा, हे शुकदेव, आप क्या कीजिए, इस अमृत को लीजिए, आप भी पी लीजिए, और ये बेचारा जो परीक्षित है उनको भी पिलाइए, लेकिन एक चीज इसके बदले में हमें चाहिए, क्या है? कृष्ण कथामृतम। तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा, आप लोग उसके लिए योग्य नहीं हो, ये अमृत आप लेके जाओ वापस, परीक्षित क्वालिफाइड है इसको सुनने के लिए। तो इस प्रकार से देवतागण भी साधु का संग या कृष्ण कथा आदि के लिए लालायित रहते हैं। तो कृष्ण स्वयं कहते हैं कुरुक्षेत्र में, वो कहते हैं यद्योगेश्वर दर्शनम, उनके लिए दुष्प्राप्य है, कठिन है। तो ऐसे भगवान कहते हैं, वो उसी का 4-5 श्लोक का वो सिक्वेंस है श्रीमद भागवतम के 10th स्कंद में, कुरुक्षेत्र का वर्णन जब आता है तो उसमें कृष्ण कहते हैं, नागनीर न सूर्यो न च चंद्र तारका न भूर्जलम खम शसनोथ वाग्मनः। उपासिता भेद कृतो हरंत्यगम विपच्छितो ग्रंथि मुहूर्त सेवया। उन्होंने कहा ये सारे जो सूर्य है, चंद्रमा है, तारे है, पृथ्वी और बहुत सारी चीजें हैं, हाँ, वो आपको बहुत लंबे समय के बाद एक प्रकार से आपके पापों को खत्म कर देते हैं, देवता गण आदि, हाँ, उनकी सेवा में मग्न होने से। लेकिन हाँ, जो साधु गण है, विपच्छितो ग्रंथि मुहूर्त सेवया, मुहूर्त, ऐसे महान वैष्णव का थोड़ा सा भी मुहूर्त, थोड़े से समय के लिए आप उनको सर्व करते हो तो उससे ये पाप राशि आदि है पूर्ण रूपेण खत्म हो जाती है। तो वहां प्रभुपाद के डिसाइपल जब परपट में कमेंट्री लिखते हैं तो वो कहते हैं क्या है मुहूर्त सेवया, वो कहते हैं द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस सिम्टम्स ऑफ इमैच्योरिटी इज टू हियर फ्रॉम एंड ऑनर प्योर वैष्णवास एंड टू असिस्ट देम इन वर्किंग टू डिलीवर द फॉलन कंडीशन सोल। हाँ, तो मुहूर्त सेवा क्या है, उनके द्वारा श्रवण करना, हाँ, और उनके सर्व करना और उनको असिस्ट करना, हाँ, कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए। इसलिए शास्त्र इस चीज पर जोर देते हैं कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु भी अपने आचरण से इस चीज की शिक्षा देते हैं कि वास्तव में इन सब का उद्देश्य यात्राओं का कि हमें जाकर उन स्थानों में साधुओं की खोज करनी चाहिए और उनका संग लाभ करना चाहिए। हाँ, यदि हम ये नहीं करते और केवल इस भावना से जाते कि वहां जाकर डुबकी लगाएंगे, वहां जाकर केवल दर्शन आदि करेंगे, हाँ, तो वो उससे हमें कोई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो हम कृष्ण कहते हैं फिर उसी कन्वर्सेशन में कहते हैं यशात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रा दिशु भवमये जदि यत्तीर्थ बुद्धि सलिलेन करेचित जनेशु अभिज्ञेशु स एव गोखरा। जो व्यक्ति केवल इस भावना से जाता है कि उस स्थान में जाकर डुबकी लगाऊंगा, उस स्थान में जाकर केवल बहुत सारे दर्शन करूंगा और इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है साधु संग उसको छोड़ता है, तो वो व्यक्ति कृष्ण स्वयं कहते हैं, ये श्लोक कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने बोला था, सारे ऋषि मुनि थे, कृष्ण ने कहा कि ऐसे लोग स एव गो खरा, गो मीन्स गाय और खरा मीन्स गधा, ऐसे लोग वास्तव में गाय और गधे से बढ़कर नहीं है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान के भक्त वो भी यात्रा करते हैं, जो महान महान वैष्णव हैं वो यात्रा करते हैं, लेकिन किसके लिए यात्रा करते हैं, हमारे जैसे जो बद्ध जीव है उनकी यात्रा को बंद करने के लिए, हमारी जो जन्म मृत्यु की यात्रा है उसको बंद करने के लिए प्रभुपाद जैसे महान आचार्य यात्रा करते। चैतन्य महाप्रभु ने भी यात्रा की वृंदावन दक्षिण भारत, उस यात्रा में दूसरों की यात्राएं बंद कर दी, भौतिक यात्रा, हाँ, जैसे जो पशु आदि थे झारखंड में या फिर दक्षिण भारत में हजारों लोगों का उन्होंने उद्धार किया। तो इस प्रकार से यात्राओं का ये प्रमुख उद्देश्य है, हाँ, भगवान के जो भक्त है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को भी यात्रा करने के लिए कहा, हाँ, जब उनको बनारस और इलाहाबाद में मिले तो उनको कहा कि आप जाओ वृंदावन, जाओ वृंदावन की यात्रा करो, वहां जाकर क्या करो, वहां जाकर उन्होंने कहा कि भक्त भक्ति प्रचारिया, भक्त का प्रचार करो और शास्त्रों का कंपाइल करो, जिसके द्वारा जो बाकी भौतिकतावादी जीव हैं उनका निस्तार हो सकता है। तो लेकिन हम ऐसे दुर्भाग्यशाली हैं कि हम उससे दूर रहना चाहते हैं, साधु संघ से क्या करना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं भक्तों के संघ से। इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि लोग घर के सामने हमेशा लिख के रखते कुत्तों से सावधान रहिए, तो वो आने नहीं देते, साधुओं को क्या करने नहीं देते, आने नहीं देते। मैं भूल गया, एक डिवोटी बंगाल में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे एक वैन, तो मुझे एक बार कुछ साल पहले उनकी घटना बता रहे थे, तो एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन एक, 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 एक परिवार था जिन्होंने 3-4 कुत्ते पाल के रखे थे। तो वो कुत्ते, ये भक्त लोग, ये बस पार्टी था बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता था, और ये 2-3 कुत्ते होते थे उस टाउन में भक्त लोग रुके थे। तो ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उस घर में घुसे तो वहां कुत्ते सीधा आ गए और आए नहीं, वो जो ओनर था उसने छोड़ा कुत्तों को, साधुओं को देखकर घर के थोड़ा सा अंदर घुसे थे कि कुत्ते आए 2 कुत्ते काटने के लिए। तो फिर जब भक्त अंदर घुस रहे थे उन्होंने देखा कुत्ते आ रहे हैं। अभी भक्त बेचारे डर भी गए थोड़े, कुत्ता काटते तो कितने सारा ट्रबल है। तो लेकिन एक भक्त के पास क्या था, छाता था लंबा जिसमें वो पीछे होता है ना टोकदार, वो आए कुत्ते भोंकते हुए। उसने एक तो पिटाई की कुत्तों की और दूसरा मुंह में छाता डाला, तो ओनर चिल्लाते हुए रोते हुए वहां से आ रहा था। इस प्रकार से ऐसे जो लोग है भौतिकतावादी, वो साधुओं को दूर रखना चाहते हैं, भक्तों से दूर भागना चाहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम भी ऐसे लोगों का वर्णन करते हैं। भागवत कहते हैं कि दो प्रकार के घर होते हैं, एक है सत ग्रह और दूसरा है असत ग्रह। ग्रह मीन्स घर। हाँ, ग्रह तभी है जब उसमें नारी है। हाँ, गृहस्थ उसे कहते हैं जो घर में स्थित होता है लेकिन अकेले नहीं। हम चैतन्य चरितामृत कहते हैं कि नारी के साथ, पत्नी के साथ। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में 34 स्कंद में वर्णन आता है कि वो सत ग्रह है, अधना अपिते धन्या, वो व्यक्ति धन्यवान है जिसके घर में भौतिक धन नहीं है। अधना अपिते धन्या साधको ग्रह में दिना, वो क्या करते मे भी उनके पास भौतिक सुविधा नहीं है, भौतिक धन आदि नहीं है, लेकिन वो किनको अलाव करते घर में, साधुओं को अलाव करते हैं। और क्या करते हैं, यद ग्रह यार वया मुद्रण भूमि स्वरावरहा, कि उन साधुओं को इनवाइट करके उनके पास में भी कुछ भौतिक चीजें नहीं है, लेकिन उनके पास वो केवल साधुओं को घर में बुला के थोड़ा जल अर्पित करते हैं, उनको बैठने के लिए थोड़ा आसन आदि देते हैं। हाँ, और उनका उनसे कुछ श्रवण करने की आकांक्षा रखते हैं। तो ऐसा जो ग्रह है जिनको जिनमें भगवान के भक्तों को इनवाइट किया जा रहा है, भगवान के भक्तों को अलाउ किया जा रहा है, तो ऐसे जो घर है उनको कहते हैं सत ग्रह है। और भागवतम फिर आगे श्लोक में कहता है, और जो घर जिनमें में भी भौतिक धन संपदा आदि बहुत अधिक है, व्यालालय द्रुमावय त्वेषा रिक्त खिल संपदा यद ग्रह तीर्थ पादेय पाद तीर्थ विवर्जिता, पाद तीर्थ भगवान के भक्त, हाँ जिनको तीर्थ पाद या पाद तीर्थ भी कहा जाता है, विवर्जिता उनको वर्जन किया जाता है, अलाव नहीं किया जाता, वो घर घर नहीं है, वो व्याल आलय, व्याल आलय मतलब सर्प का क्या है घर है, वहां सारे ईर्ष्यालु सर्प रहते हैं। हाँ, मैं भी भौतिक संपदाओं के साथ। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जिस घर में भक्तों को भक्तों की सेवा में निमग्न नहीं है या जिनको अलाव नहीं करते, ऐसा स्थान सर्पों का निवास स्थान है, वो घर नहीं है, वो सर्पों का निवास स्थान है। और दूसरा स्थान, चाहे मैं भी भौतिक रूप से क्यों ना बहुत गरीब क्यों ना हो, लेकिन भगवान के भक्तों को वहां आदर है, भगवान के भक्तों का वहां सेवा की भावना है, तो वो स्थान सत ग्रह है। इसलिए परीक्षित महाराज कहते कि कितनी ग्लोरीज है भगवान के भक्तों की, हे शाम संस्मरणात्मसा सद्य शुद्यन्ति वैग्रह किं पुनर्दर्शन स्पर्शाद पाद शौचासन आदि भी। तो जब परीक्षित महाराज ने देखा कि मैं मुझे तो ये शाप मिला है मृत्यु का, और मैंने सारी चीजों को त्याग दिया है और गंगा का शरण ग्रहण किया है, और भगवान की कृपा से वहां शुकदेव गोस्वामी आए हैं, तो शुकदेव गोस्वामी का गुणगान करते हुए वो कहते हैं, ये शाम संस्मरणात् पुंसा, कि कहते आप जैसे महान वैष्णव का स्मरण करने मात्र से क्या होता है, सद्य सद्य में तुरंत शुद्धयन्ति वैग्रह, घर भी शुद्ध हो जाता है, तो उसमें रहने वाले जीव उसमें रहने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाए, केवल उनका स्मरण करने मात्र से। हाँ, जिनका स्मरण करने से इतना शुद्धि होता है, तो फिर किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौच आसन आदि भी, तो फिर क्या कहा जाए, जिनके स्मरण से इतना लाभ है, तो उनका दर्शन, उनका स्पर्श, उनके चरण कमलों का अभिषेक और उनको आसन आदि देना, उनको सर्व करना, उससे कितना लाभ प्राप्त हो सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब अपने स्टूडेंट्स को लेकर, वो निमाय पंडित के रूप में थे, स्टूडेंट्स को लेकर गए गया बिहार में, तो वहां गए, तो वहां उन्होंने भगवान विष्णु का एक चरण चिन्ह है, एक पदी कहते हैं उसको, हाँ भगवान विष्णु के जो चरण है उनका दर्शन किया, और चरणों का ग्लोरीज वहां के ब्राह्मणों से सुना चैतन्य महाप्रभु ने, केवल चरणों की महिमा इतनी अधिक उन ब्राह्मणों ने वर्णन की, चैतन्य महाप्रभु ने सुना और सुनकर रोने लगे। कृष्ण के चरणों की महिमा को सुनकर, कृष्ण के चरणों का आश्रय लेने की जो महिमा है, और वो उठते कि नहीं, उन्होंने देखा पीछे ईश्वरपुरी खड़े हैं। हाँ, और ईश्वरपुरी को देखने मात्र से जब उनसे चर्चा की तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभु बोले गया यात्रा सफल अमार, यतक्षण देखिला हूं चरण तुमार। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, निमाई ने कहा कि वास्तव में गया की यात्रा सफल हो गई है। क्यों सफल हो गई? कि आपके चरण कमलों का मुझे दर्शन मिला है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस उद्गार को कहते हैं, तीर्थ पिंड दिले से निस्तरे पितृगान, से ही जा रे पिंड दे तारे से ही जान। आप पिंड देते हो उस व्यक्ति के लिए, पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, उस पिंड से वही एक व्यक्ति का उद्धार होता है, लेकिन तोमा देखे लिए मात्र कोटि पितृगण, आपका दर्शन करने मात्र से उस व्यक्ति के जितने पूर्वज है वो क्या होते हैं, सही क्षण सर्व बंध पाय विमोचन, उसी क्षण सारे जो पूर्वज है वो मुक्त हो जाते हैं। तो वास्तव में हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो हमारे पूर्वज हैं, उनका भी ऋण हमारे ऊपर होता है, तो वो किसी ना किसी प्रकार से भौतिक स्थिति में गिरे हुए हैं, नारकीय स्थिति में आदि में हैं, लेकिन वो जब देखते हैं कि हमारे परिवार में कोई व्यक्ति, कोई परिवार का सदस्य कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर रहा है, या वैष्णव सेवा करने में, या कृष्ण नाम आदि को सर्व करने में रुचि ले रहा है, तो वो आनंदित हो जाते हैं, नाचने लगते कि अरे अभी हमारा समय आ गया है, अच्छे दिन आ रहे हैं, कि हमारे परिवार में क्या है, वैष्णव जन ले रहा, वैष्णव सेवा हो रही है, कृष्ण को सर्व किया जा रहा है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अतएव तीर्थ न है तुम्हारा समान, तीर्थ रे वो परम तुम्हें मंगल प्रदान। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ईश्वरपुरी को कि आपके समान पवित्र करने वाला तीर्थ कोई नहीं है, सर्वोत्कृष्ट हो। इसलिए इस चीज का शास्त्र में बहुत अधिक वर्णन आया है। भक्ति विनोद ठाकुर ने तो इसके ऊपर एक सॉन्ग ही लिखा है कल्याण कल्पतरु में, वो कहते मन तुम्हें तीर्थ सदारत, वो मन के लिए, उन्होंने मन के लिए बहुत सारे गीत लिखे, बहुत शिक्षा प्रद है। एक गीत में कहते मन तुम सन्यासी बनना चाहते हो, क्यों चाहते हो सन्यासी बनना, उसकी चीजें उन्होंने लिखी है, तुम ये चाहते हो भौतिक सुविधा, वो चाहते हो, वो चाहते हो, तो वो एक सॉन्ग लिखते है कि मन तुम्हें तीर्थ सदारत, मन तुम सदा तीर्थों का भ्रमण करना चाहते हो, अयोध्या मथुरा काशी कांची अवंती हरिद्वार आदि, हाँ तुम मुक्ति आदि को चाहते हो, लेकिन इससे क्या लाभ, से सकल तव भ्रम निरर्थक परिश्रम, वो सारा तुम्हारे मन का भ्रम है, वो केवल परिश्रम है, चित्ते स्थिर तीर्थ नाही करी, जितना मर्जी भ्रमण करो आपका चित्त की चंचलता कभी खत्म नहीं होगी, एक ही चीज से चित्त स्थिर हो सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, वो कहते हैं तीर्थ फल साधु संग, साधु संगे अंतरंग, श्री कृष्ण भजन मनोहर। तीर्थों का फल क्या है, साधु संग, साधु संग अंतरंग, श्री कृष्ण भजन मनोहर, यथा साधु तथा तीर्थ स्थिर करे निज चित्त, साधु संग कर निरंतर। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जहां साधु है वहां तीर्थ है, सारी यात्राओं के लिए वो हमारा डेस्टिनेशन है। हाँ, से स्थिर करे निज चित्त, साधु संग कर निरंतर, अपने चित्त को स्थिर करो, साधु संग में, और साधु संग में ही चित्त स्थिर हो सकता है। इसलिए वो कहते हैं जे तीर्थे वैष्णव नाई से तीर्थे ना जाए, कहते कि जिस स्थानों में भगवान के भक्त नहीं है मैं कभी भी उस स्थान में जाने की इच्छा नहीं व्यक्त करूंगा, से तीर्थे नाही जाए कि लाभ हंटी या दूर देश, क्या लाभ है ऐसे दूर दूर स्थानों में भ्रमण करने का, यात्राओं में जाने का। फिर वो आगे लाइन में कहते हैं जथाय वैष्णवगण से ही स्थान वृंदावन, से ही स्थान आनंद अशेष, जहां ऐसे वैष्णवगण है वो स्थान वृंदावन से अभिन्न है, और उस स्थान में आनंद है अशेष, न खत्म होने वाला। विनोद कही छे भाई भ्रमिया की फल पाए, वो कहते भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मैं भक्ति विनोद ठाकुर कहते विनोद कहे छी भाई भ्रमिया की फल पाए, अरे भाई ये ये भ्रमण कर करके क्या लाभ मिलने वाला है? वैष्णव सेवन मोरा चित्त, वो कहते हैं कि मेरा तो चित्त वैष्णव के सेवन में लगा है और उसी में मग्न रहना चाहता हूँ। तो अल्टीमेटली कई सारे शास्त्रों से उद्धरण है और भक्तिविनोद ठाकुर और अलग अलग आचार्य ये चीज को हमें शिक्षा प्रदान करते हैं कि वास्तव में तीर्थ यात्रा आदि में भ्रमण करने का एक वो उद्देश्य है भक्तों के भगवान के भक्तों का संग लाभ करना, और उस संग लाभ के माध्यम से ही वास्तव में हम कृष्ण के प्रति जो अनुराग की भावना है उसमें विकास कर सकते हैं। अब वास्तव में तीर्थ में जाना या किसी आध्यात्मिक स्थल में जाना मीन्स वापस ले आना कृष्ण को, क्या करना? वापस ले आना। जैसे अर्जुन ने भी यात्रा की थी द्वारका की, हाँ दुर्योधन ने भी की, लेकिन क्या लाए दुर्योधन? कृष्ण को छोड़ दिया, बाकी सब चीजें लाए। हम यात्राओं में जाते हैं बाकी सब चीजों को इकट्ठा करते ना, कितना सारा परचेज कितना कुछ कुछ करते हैं, लेकिन जो चीज के लिए हम आए हैं कृष्ण को छोड़ के कृष्ण शक्ति को लेके वापस जाते हैं। दुर्योधन कृष्ण द्वारका गया, द्वारका की यात्रा में गया हस्तिनापुर से, और अर्जुन भी गए और अर्जुन बिल्कुल स्थिर थे पक्का। उन्होंने कहा कृष्णा आप चाहिए बस, और दुर्योधन ने कहा नहीं नहीं आपके अलावा जो बाकी चीजें है ना वो चाहिए। हाँ वो यात्रा से वापस आए दोनों हस्तिनापुर आए तो दोनों ने अलग अलग चीजें लाई। इस प्रकार से वापस जाने का मतलब है हाँ कि कृष्ण सेवा के लिए हाँ वैष्णव सेवा आदि के लिए इंस्पिरेशन लेकर हम वापस जाए ताकि हम और स्ट्रांगली अपना जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें फोकस्ड करते हुए आगे बढ़े। जैसे प्रभुपाद कहते थे द पर्पज ऑफ पिलग्रिमेज इज टू रिमेम्बर द लॉर्ड कॉन्स्टेंटली एंड देयरफॉर द लॉर्ड इज नोन एज तीर्थ कीर्ति। द पर्पज ऑफ गोइंग टू ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इज टू गेट द चांस टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड। प्रभुपाद कहते हैं उद्देश्य है क्या है? उद्देश्य कृष्ण का निरंतर हमें स्मरण हो, हाँ क्योंकि कृष्ण को तीर्थ कीर्ति कहा जाता है जो कीर्ति से भरे हुए हैं। और प्रभुपाद द पर्पज ऑफ गोइंग टू ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इज टू गेट द चांस ऑफ ग्लोरीफाई द लॉर्ड। ये चांस हमें मिलता है कि कृष्ण का हम अधिक से अधिक हम गुणगान करें। अक्रूर ने भी यात्रा की थी, ऐसे हजारों उदाहरण में सोच रहा था कृष्ण बुक चैतन्य चरितमृत आदि तो भरे पड़े हैं। अक्रूर भी कंस के द्वारा यात्रा में गए थे, हाँ कंस का वो गुणगान भी करते हैं कि अच्छा चलो यात्रा में जाओगे तो वहां कृष्ण का, और वो अपने साथ किसको लेके आए वापस? कृष्ण बलराम को। कृष्ण बुक में उस फ्रूट सेलर जो लेडी है जो फल बेचने वाली जो महिला है उसका वर्णन आता है। वो गई यात्रा में गई, हाँ ब्रज की यात्रा में गई ना गोकुल की, जहाँ गई फल बेचने और वही की हो गई, वो नदी को क्रॉस नहीं करना चाह रही थी। तो वास्तव में उसने अपने साथ कृष्ण प्रेम रूपी धन को वो ले आए। इस प्रकार से यात्राओं का परम उद्देश्य यही होना चाहिए कि अधिक से अधिक हमारा जो हृदय है कृष्ण के नाम रूप गुण लीला और धाम आदि के लिए तत्पर हो जाए, और गुरु और वैष्णव की सेवा के लिए जो उत्साह की भावना है वो जागृत हो जाए। इस प्रकार से यात्राओं का ये परम उद्देश्य है और हमें प्रयास करना चाहिए अपने पर्सनल आध्यात्मिक जीवन में भी, चाहे जहां मर्जी हम जाएं उस स्थान में हम हमेशा इसी पर फोकस रहे कि कैसे अधिक से अधिक भगवान के भक्तों का संग लाभ हो, और उस संग लाभ के द्वारा हमारा जो भ्रमित चंचल मन है हाँ उसको मैं गुरु और कृष्ण की सेवा में स्थिर कर सकूं। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे।
श्री चैतन्य महाप्रभु की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, पिताय गौर प्रेमानंदे।